मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा सप्ताह का यह तीसरा व्याख्यान है और इसमें हम पिछले जो दो व्याख्यानों से बात करते आ रहे हैं उसी की अब गहराई में धीरे धीरे उतरते चलेंगे। लेकिन पहले जो दो तीन इम्पॉर्टेंट घटनाएं इस बीच हुई हैं, मुझे लगता है कि वो मुझे आपके ध्यान में ला देनी चाहिए। पहली बात यह है फ्रेंड्स कि अभी जो केरल का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसने एक फैसला दिया है और फैसले में ये कहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, अभी तक क्या होता था कि मुस्लिम महिलाएं अगर किसी से तलाक लेना चाहती हैं तो उन्हें बकायदे न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता था, यानी कि न्यायालय के माध्यम से ही वे तलाक ले सकती थी। जैसा कि आप देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में भी इसी तरह की प्रक्रिया है। अब उन्होंने ये फैसला दिया है कि नहीं, जो अन्य तरीके हैं उनमें बकायदे उन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए भी मुस्लिम महिला तलाक ले सकती है। पहले इसी न्यायालय ने लगभग 50 साल पहले जो दूसरे उपाय हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, अब उन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। चूंकि वीमेन एम्पावरमेंट आपका टॉपिक है इसलिए ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कह लीजिए आपके पास होनी चाहिए। एक दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है कि न्यूजीलैंड, जो बहुत ही छोटा सा देश है, और आप देखते हैं कि न्यूजीलैंड की खबरें अब काफी आती हैं क्योंकि कोरोना को रोकने में सबसे बड़ी सफलता न्यूजीलैंड को मिली थी। तो न्यूजीलैंड की जो सरकार है उसने अब बकायदे जलवायु परिवर्तन कानून लागू कर दिया है, जलवायु परिवर्तन कानून, और इस कानून को लागू करने वाला यह दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। इसने फैसला किया है कि 2005 तक हम बिल्कुल अपने देश को कार्बन मुक्त कर देंगे, उसके तहत ये कानून लागू किया गया है। और इस कानून के अंतर्गत सरकार को यदि किसी कंपनी पर यह लगता है कि इसकी वजह से आप यूं कह लीजिए कि प्रदूषण फैल रहा है तो बकायदे वो उस कंपनी को तलब कर सकती है और उससे जरूरी रिपोर्ट मांग सकती है और फिर जो आगे की कार्रवाइयां होंगी वो कर सकती है। तो स्वाभाविक है कि इससे जो कंपनियां हैं वो सतर्क हो जाएंगी। जो तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आगे चल करके थोड़ा संभव हुआ तो विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों को भी यदि इस पर कोई आर्टिकल पढ़ने को मिलता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बकायदे उसकी कटिंग्स रख लें। वो ये है कि अब अमेरिका सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अफगानिस्तान में उनकी जो फौजें मौजूद हैं उन सभी को 11 सितंबर तक वापस बुला लिया जाएगा। पहले ये डेट इससे भी पहले बुलाई जाए, जब ट्रंप थे राष्ट्रपति तो उन्होंने डेट फिक्स की थी 1 मई, लेकिन अब उसे थोड़ा सा बढ़ा करके 11 सितंबर कर दिया गया है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले अमेरिका और तालिबान सरकार अफगानिस्तान इनके बीच में एक समझौता सा हुआ था जिसकी पूरी दुनिया में बड़ी आलोचना भी हुई थी, उसके तहत ये डेट 1 मई की डिसाइड की गई थी, अब उसे बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया गया है। चूंकि इसका सीधा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ना है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पहले आ भी चुका है, बहुत पहले मतलब 2013-14 के आसपास, तो इस दृष्टि से यह अमेरिका का जो निर्णय है भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस खबर के बारे में आपको सतर्क रहना होगा। लेकिन चूंकि अभी हम लोग फिलहाल प्री एग्जामिनेशन के वीक पर चल रहे हैं इसीलिए दोस्तों इस पर मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत खुले मन से इस वीक का स्वागत किया है और मेरे पास कुल 357 ईमेल आए, 357 ईमेल, और इसमें जो 100 के लगभग जो मेल्स थे वो अच्छे किस्म के मेल्स थे जिन्हें मैं उम्दा किस्म का कहूंगा। और सच में मुझे अफसोस है कि आज मैं उन मेल्स लिखने वालों के नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अगर मैं 100 लोगों के नाम लूंगा तो पूरा वीक का जो आज का समय इसी में खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, प्रशंसा करता हूं इनफैक्ट। और मुझे लगता है कि यदि आप लोग मेल सोच समझ कर लिखें, थोड़ा सा वक्त लगा कर लिखें, उस पर थोड़ी सी तैयारी कर लें कि मुझे क्या लिखना है, तो आप सब अच्छा लिख सकते हैं। और जब आप अच्छा लिखेंगे तो आपका नाम लेने में मुझे बेहद खुशी होगी, लेकिन माफी चाहूंगा कि आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन खैर चलिए, तो दोस्तों मुझे 357 ईमेल्स मिले, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसमें से केवल 8 मेल ऐसे थे जिसमें इस बात का उल्लेख है कि हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़े, केवल 8। अब आप देखिए कल प्रतिशत निकाल लीजिएगा, उस 8 में से 2 स्टूडेंट ने लिखा कि बकायदे जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं याद करने की कोशिश की तो वे याद कर गए। हाँ, थोड़े से उसके जो विकल्प थे उनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और कुछ विकल्प याद भी नहीं आए, लेकिन काफी कुछ क्वेश्चंस याद आ गए। और उसमें से 3 स्टूडेंट ने लिखा कि नहीं, हमने जब थोड़ा सा दिमाग पर दबाव डाला, अंदर धैर्य रखा तो हमें याद आ गए। शुरू में ये लग रहा था कि नहीं नहीं याद नहीं आएंगे, हम परेशान हो रहे थे कि अरे छोड़ो छोड़ो, लेकिन याद आ गए और इसके लिए उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी स्टूडेंट ने जिन्होंने ये अभ्यास किया, एक तरीके से अपने अंदर एक नए किस्म का आत्मविश्वास जनरेट किया। मतलब उनको ये लगने लगा जो उन्होंने लिखा है स्पष्ट तौर पर, इसके लिए उन्होंने बहुत आभार व्यक्त किया है कि सर आपने तो एकदम तैयारी करने के एक नई दुनिया से हमारा परिचय करा दिया, एकदम नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हम लोग इसी बात पर आएंगे। जो मैंने मोटा अनाज को लेकर के जो आप लोगों को एक क्वेश्चन पढ़कर सुनाया था, जो मैंने खुद फ्रेम किया था, उस पर प्रतिक्रियाएं बहुत आई है और उनकी संख्या है 224। अब आप देखिए कि साफ समझ में आता है कि मैंने चूंकि अब पढ़ करके सुनाया है और आप डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं, तो अब तो आपकी मजबूरी है कि सुनना ही सुनना है। तो सब ने अपना सुना, ठीक है, होमवर्क आप सब ने किया, उस पर विचार किया, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। और उसमें से जो सही आंसर दिया 116 स्टूडेंट ने, बाकी सब गड़बड़ा गए। कुछ ने गलत आंसर दिया, कुछ गड़बड़ ही रह गए, कुछ नहीं दे पाए, कुछ भ्रमित रह गए। लेकिन एक अच्छी बात मुझे ये लगी सबके लिए, चाहे उन्होंने आंसर सही दिए हो या गलत दिए हो, कि अगर गलत आंसर भी है तो आप लोगों ने अपनी समस्या बताई है कि आप कहां गड़बड़ी कर रहे हैं, किसकी वजह से आप भ्रमित हो रहे हैं। और जिन्होंने सही आंसर दिए वो डायरेक्ट नहीं जान रहे हैं चीजों के बारे में, उत्तर के बारे में, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोसेस बताई है कि सर हमने ये किया, फिर ये भ्रम हुआ, फिर इसके आधार पर सोचा तो फिर सही आंसर तक पहुंच गया और सही आंसर ये होगा, ये उन्होंने लिखा। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने कम से कम, मैं ये तो कहना ही चाहूंगा और मुझे कहना भी चाहिए कि मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को ईमानदारी के साथ सुना। ईमानदारी शब्द को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सुनते सब हैं लेकिन इस शब्द का प्रयोग बहुत कम लोग अपने जीवन में कर पाते हैं। ईमानदारी के साथ सुना, उस पर थोड़ा सा विचार भी किया, थोड़ा सा जो मैंने प्रैक्टिकल करने के लिए कहा था उस वह प्रैक्टिकल भी किया और इसके बाद फिर मुझे उसकी सूचना भी दी। दोस्तों, आप देखिए जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीजें आपके अंदर हैं लेकिन उनका बाहर आना किसी न किसी मायने में रुका हुआ है। आपके पास बहुत जानकारी है, आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके घर में अशर्फियों से भरा हुआ बिल्कुल कोई घड़ा है, सोने की अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा है, लेकिन वो कोने में रखा हुआ है। आपको मालूम है या नहीं मालूम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका जीवन बहुत दुभर है, आप बहुत गरीबी का जीवन जी रहे हैं, जबकि आपके घर में असरफियों से भरा हुआ घड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स कि आपके पास चाहे जितनी भी नॉलेज हो, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, आपने जितनी भी मेहनत की हुई हो, लेकिन अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में नहीं आ पा रही है, आप बताइए कि उसका अर्थ क्या है? उसका कोई अर्थ है क्या? आपने बहुत अच्छी तलवार अपने घर की कमरे की दीवार पर टांग रखी है, लेकिन आपको या तो चलाना नहीं आता, चलाना आता है भी हो तो आप चलाते नहीं हैं, तो उस तलवार का क्या अर्थ है? कोई अर्थ है? आपको जानना होगा कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो नॉलेज है, उसका अर्थ केवल तभी है जब वो समय पर काम आए। काम आए की बात मैं नहीं कर रहा हूं, समय पर काम आए। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपके पास 120 मिनट का समय है और इस दौर में आपको 100 प्रश्न हल करने हैं, और ये जो 100 प्रश्न भी हल करने हैं ये जटिलता लिए हुए हैं, ये सीधे सीधे नहीं है, यस नो नॉट एट ऑल, उनकी जो बुनावट है वो बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्सिटी लिए हुए है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न पूछने के बाद उनके जो विकल्प दिए गए हैं, वो सारे विकल्प आपके पढ़े हुए नहीं हैं। तब आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सोच करके देखिए कि इस जद्दोजहद से निकलने के लिए, आप यूं कह लीजिए कि जिस तरीके से महाभारत में अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी, ठीक इसी तरह से कहीं ना कहीं यूपीएससी के जनरल स्टडीज का यह फर्स्ट पेपर आप जिसे मैं यहां अभिमन्यु कहूंगा, उसके लिए एक चक्रव्यूह की रचना करता है। ज्ञान के जरिए, ज्ञान के पूछने के तरीके के जरिए कि जिस तरह से जटिलताएं वहां क्रिएट कर दी जाती हैं, और फिर समय के दबाव के जरिए, यह पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह है। और यूपीएससी ये देखना चाहता है कि आपका दिमाग इस चक्रव्यूह को तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि यदि उसे लगता है कि आपका दिमाग इसे नहीं तोड़ पा रहा है तो वो मान करके चलता है, फिर आपको प्रशासक नहीं बनाया जा सकता, फिर मसूरी की जो एकेडमी है लाल बहादुर शास्त्री कुछ नहीं कर सकती। और यदि आपने इसे तोड़ लिया तो फिर उसे लगता है कि नहीं नहीं कुछ तो आपके साथ बेहतर किया जा सकता है, आपको प्रशासक बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि आप इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे कैसे? क्या सिर्फ पढ़ने पढ़ने से टूट जाएगा? अगर पढ़ने पढ़ने से टूट जाता तो फिर आप सॉल्व कर चुके होते। मोटा अनाज पर जो मैंने आपको प्रश्न दिया था, मैं समझता हूं कि यूपीएससी में यदि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका मूल्यांकन किया जाए तो उन प्रश्नों में यह एक प्रकार से सामान्य स्तर का प्रश्न है, मतलब एक कठिन प्रश्न नहीं है, यह बहुत सरल प्रश्न है। मुझे अफसोस इस बात का है कि सरल होने के बावजूद 224 स्टूडेंट में से केवल 116 के सही क्यों हुए, बाकी कहां गए, 108 के गलत क्यों हुए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसकी चर्चा मैंने पिछले ही सप्ताह की थी, और मैंने सामान्यतया इसमें जो विकल्प दिए हैं इन विकल्पों के बारे में भी मैंने पिछले सप्ताह बात की थी। अब आप अपने अपने दिमाग के बारे में सोच करके देखिए, उनका मूल्यांकन कीजिए कि पिछले सप्ताह आपने डेली ऑडियो लेक्चर सुना है, आप अगर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ जानते हैं या आपने इकोनॉमिक्स की तैयारी कर ली है, वह भी आप पढ़ चुके हैं, इसके बावजूद इतने सामान्य से स्तर के प्रश्न का उत्तर आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, यह आपके सोचने का विषय है। आपको इस विषय पर सोचना ही चाहिए अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो। प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या चरित्र होता है, उनकी क्या चुनौतियां होती हैं दोस्तों, इसके बारे में डेफिनेटली मैं कल आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन उन बातों को आप समझ सकें, मेरी उन बातों पर आप यकीन कर सकें, और यकीन करने के बाद अपना मूल्यांकन करके अपने को विकसित कर सकें, इसके लिए जरूरी था कि मैं आपको ये होमवर्क दूं। ठीक उसी तरह से जैसे कि जो फसल होती है वो तो जमीन पर ही होती है, जमीन पर ही होती है, और उसी जमीन पर होती है जिस जमीन पर आप जुताई कर रहे हैं। तो आप किसान से पूछ सकते हैं कि भैया जुताई क्यों कर रहे हो यार, फेंक दो दाने, ऐसे इसी मिट्टी में तो होना है। तो किसान क्या कहेगा कि नहीं, अगर मैंने बिना जुताई के ये दाने फेंक दिए तो बहुत से दाने तो मर जाएंगे और जो फसल होगी भी वो बेहतर नहीं होगी। तो दोस्तों कुछ नहीं, मैंने केवल 3 दिनों तक आपके दिमाग की प्री एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जुताई भर की है, यदि आप मुझ पर यकीन कर सकें तो। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को बहुत बहुत और बहुत से दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।